उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं, खेल संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूँ।
पूर्वोत्तर डायरी।
श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम श्रद्धांजलि देंगे मशहूर गायक और कंपोजर जुबिन गर्ग को। जुबिन गर्ग एक प्रसिद्ध असमिया गायक थे और बॉलीवुड में भी उनका योगदान था। बीते शुक्रवार को स्कूबा डाइविंग के दौरान उनका आकस्मिक निधन हुआ।
इस शुक्रवार को सिंगापुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। मशहूर असमिया गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग का एक स्कूबा डाइविंग हादसे में निधन हो गया। वे केवल 52 वर्ष के थे। उन्हें समुद्र से बाहर निकालकर सिंगापुर पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सा कक्ष में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुबिन गर्ग के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि गर्ग हमेशा अपने समृद्ध संगीत योगदान के लिए याद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी रचनाएं हर वर्ग के लोगों में लोकप्रिय थी। उन्होंने परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बॉलीवुड और खासकर संगीत जगत के लिए ये एक दुखदायी खबर है। गायक जुबिन नौटियाल ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उनका संगीत हमेशा दिलों में गूंजता रहेगा। गायक पापोन ने उन्हें पीढ़ी की आवाज बताते हुए कहा कि एक भाई एक दोस्त खो दिया। संगीतकार प्रीतम ने भी इसे बेहद दुखद बताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। जुबिन गर्ग सिंगापुर में 4th नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जो 20 और 21 सितंबर को आयोजित होना था। घटना से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर प्रशंसकों को इस उत्सव में आने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने बताया था कि इस आयोजन में पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पाद, शिल्प या चाय अनुभव, नृत्य, फैशन शो और संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। जुबिन गर्ग 20 तारीख की शाम लोकप्रिय हिंदी, बंगाली और असमिया गीत गाने वाले थे। असम और पूरे पूर्वोत्तर में जुबिन गर्ग को सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त था। बॉलीवुड में उन्हें पहचान वर्ष 2006 में फिल्म गैंगस्टर के गीत या अली से मिली, जिसने उन्हें पूरे देश का चहेता गायक बना दिया। वर्ष 2002 में उनकी छोटी बहन और अभिनेत्री संगीतकार जोंकी बार्थोकुर की असम के सोनितपुर जिले में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस स्मृति में गर्ग ने उसी वर्ष शिक्षु नामक एल्बम जारी किया था। जुबिन गर्ग का विवाह फैशन डिजाइनर और कॉस्ट्यूम डायरेक्टर गरिमा सैकिया गर्ग से हुआ था। आज वे संगीत की दुनिया और अपने चाहने वालों को अपूर्णीय क्षति देकर चले गए हैं।
श्रोताओं, कल यानी 20 सितंबर को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस। लाल पांडा ये एक विशेष जीव है और खास तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इसका इस तरह से महत्व है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में रेड पांडा पाया जाता है। रेड पांडा हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जीव है। इसकी निर्भरता बांस पर होती है, यानी बांस इसका भोजन होता है, और यदि ये जीवित रहता है और इसे बचाया जाता है तो पूर्वोत्तर राज्यों और तमाम ऐसे क्षेत्र जहां ये पाया जाता है वहां की जंगलों की भी सुरक्षा होती है। तो आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं रेड पांडा के बारे में विस्तार से कि ये जीव क्या है, किस तरह से इसका पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व है और किस तरह से भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में ये जीव वहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाए हुए है और क्यों इस जीव का संरक्षण आवश्यक है। आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है ताकि इस विलुप्त होते आकर्षक प्राणी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। लाल भूरे रंग के फर और लंबी झबरीली पूंछ वाले इस छोटे जीव का नाम है रेड पांडा, जिसे उत्तर पूर्व भारत और हिमालय की जैव विविधता का प्रतीक माना जाता है। भारत में रेड पांडा मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के ऊंचाई वाले जंगलों में पाया जाता है। सिक्किम ने तो इसे अपना राज्य पशु भी घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा नेशनल पार्क, दिबांग वैली और सिंगचुंग बुगुन विलेज कंजर्वेशन रिजर्व इनके महत्वपूर्ण आवास हैं। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास के बांस के जंगल रेड पांडा के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल का नोरा वैली नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क भी इनकी सुरक्षित पनाहगाह हैं। सामान्यतः ये 2,200 से 4,800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जहां ठंडा और नम वातावरण हो और बांस की पर्याप्त झाड़ियां उपलब्ध हो। रेड पांडा के नाम की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितना ये जीव खुद है। माना जाता है कि इसका नाम नेपाली भाषा से आया है, जहां पुन्या शब्द का अर्थ है बांस खाने वाला जानवर। यही शब्द धीरे धीरे अंग्रेजी में पांडा बन गया। खास बात यह है कि पांडा नाम सबसे पहले रेड पांडा को दिया गया था। रेड पांडा को कई बार लेसर पांडा या फायरफॉक्स भी कहा जाता है। इसका विकास क्रम भी बेहद पुराना है और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये करोड़ों साल पहले जीवित कुछ विलुप्त प्रजातियों से जुड़ा हुआ है। दिखने में लोमड़ी और रैकून जैसा लगने वाला ये प्राणी वास्तव में किसी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये अपनी ही अनोखी प्रजाति है। यही विशेषता इसे जैव विविधता के अध्ययन में और भी महत्वपूर्ण बनाती है। रेड पांडा का जीवन बांस पर ही निर्भर है। इसके भोजन का 95% हिस्सा बांस की पत्तियों और कलियों से पूरा होता है। हालांकि रेड पांडा फल, जामुन और कभी कभी छोटे जीव जंतु भी खा लेता है। वैज्ञानिक तौर पर वर्गीकरण में इसे मांसाहारी कहा गया है, लेकिन जीवन ये लगभग शाकाहारी की तरह ही बिताता है। पेड़ों पर रहना, उनकी डालियों पर फुर्ती से घूमना और लंबी पूंछ से संतुलन बनाए रखना इसकी खासियत है। आज इनकी संख्या लगातार घट रही है। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। वनों की कटाई, बांस के जंगलों का सिकुड़ना, झूम खेती और जलवायु परिवर्तन इनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा हैं। इसके अलावा पालतू कुत्तों और इंसानी गतिविधियों से भी इनका जीवन प्रभावित होता है। भारत में इनकी संख्या सैकड़ों में ही है और यही कारण है कि संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। रेड पांडा के संरक्षण की बात करें तो सरकार और स्थानीय समुदाय दोनों ही मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सिक्किम में कंचनजंगा लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत बांस के जंगलों को पुनर्जीवित करने और रेड पांडा के आवास को सुरक्षित बनाने पर काम हो रहा है। यहां स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर रेड पांडा गार्जियन बनाया गया है, जो जंगलों की निगरानी करते हैं और अवैध कटाई को रोकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सिंगचुंग बुगुन विलेज कंजर्वेशन रिजर्व इसका उदाहरण है, जहां स्थानीय बुगुन जनजाति ने अपने जंगलों को संरक्षण क्षेत्र में बदला और रेड पांडा सहित कई दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा में योगदान दिया। पश्चिम बंगाल के नेओरा वैली नेशनल पार्क के आसपास भी समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहां ग्रामीणों को इको टूरिज्म से जोड़ा गया है। रेड पांडा के संरक्षण का सीधा संबंध हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र से है। जहां रेड पांडा सुरक्षित रहते हैं, वहां के जंगल भी बेहतर स्थिति में हैं। यही जंगल नदियों को सुरक्षित रखते हैं, जो पूरे उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा है। इस दृष्टि से रेड पांडा केवल एक जीव नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के पर्यावरण और स्थानीय समाज के भविष्य का प्रतीक है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
श्रोताओं, देश भर में स्वच्छता ही सेवा है ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस पखवाड़े के दौरान कई स्वच्छता से जुड़ी हुई गतिविधियों का अलग अलग राज्यों में आयोजन किया जा रहा है। त्रिपुरा में भी कई गतिविधियों का इसी तरह से आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री माणिक शाह ने त्रिपुरा में एक खास कार्यक्रम में जो स्वच्छता से जुड़े हुए कर्मी हैं उनके सम्मान को लेकर विशेष बात कही और उनके योगदान को सम्मान देने और उनके योगदान के मूल्य को समझने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। हमारे संवाददाता आदित्य दत्ता की आपको ये रिपोर्ट सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री माणिक शाह ने क्या कहा और त्रिपुरा में किस तरह से स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा मनाया जा रहा है।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार को लोगों से अपील की कि वो स्वच्छता कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यकर्ता हमारे शहरों और बस्तियों को साफ और स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं और इन्हें समाज में उसी तरह की प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए जैसी अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को दी जाती है। मुख्यमंत्री साहा ने ये बात अगरतला स्थित प्रसिद्ध रविंद्र शताब्दी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मचारी समुदाय के स्वास्थ्य और भलाई के लिए अनिवार्य है कि उनके योगदान को पहचानते हुए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी दी कि राज्य के 765 खुले में शौच से मुक्त गांव में से 762 गांव को ODF प्लस मॉडल गांव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने इसे राज्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में त्रिपुरा के प्रदर्शन की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। इसी के साथ उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में 5 ग्रामीण प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयां पहले से कार्यरत हैं और आने वाले दिनों में और इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने आम लोगों से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा सफाई कार्यों में देने की अपील की। उन्होंने कहा कि विद्यालयों और युवाओं को भी इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए ताकि स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े और अधिक व्यापक बनाया जा सके। मुख्यमंत्री साहा ने सुझाव दिया कि इस दौरान वाद विवाद प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कचरे के उचित प्रबंधन और साफ सफाई के प्रति जन सामान्य को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल जन भागीदारी को बढ़ाते हैं बल्कि स्वच्छता को लेकर एक सकारात्मक माहौल भी तैयार करते हैं। स्वच्छता ही सेवा 2025 का ये नया संस्करण बुधवार से देश भर में प्रारंभ हुआ है। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुआ है और इसका समापन 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर होगा। ये 15 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान लोगों को स्वच्छता के लिए सामूहिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में साफ सफाई के व्यापक अभियान चलाना है जिसमें नागरिक, संस्थान और समुदाय मिलकर काम करें। इस कार्यक्रम को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य केंद्र है देश के गंदे, उपेक्षित और अंधेरे स्थलों की सफाई, ताकि धरातल पर साफ सफाई के मामले में परिवर्तन लाया जा सके। इस अवसर पर त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन और अगरतला नगर निगम के महापौर दीपक मजूमदार सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दी।
इस तरह मुख्यमंत्री साहा ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं की भूमिका को सम्मान देने के साथ साथ समाज के हर वर्ग को स्वच्छता अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ मैं सर फिरोजी।
स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने।
स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने।
श्रोताओं, दिसंबर महीने की शुरुआत में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में मनाया जाता है चर्चा में रहता है, और इसकी चर्चाएं अभी शुरू इसलिए हो चुकी हैं क्योंकि इस फेस्टिवल को हाल ही में नई दिल्ली में एक खास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल्चर म्यूजिक एंड डांस के लिए सिल्वर बेनिन अवार्ड से इस फेस्टिवल को सम्मानित किया गया और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने इस सम्मान को दिया। तो आइए जानते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के सम्मान के बारे में और किस तरह से ये उत्सव एक जनजातीय संस्कृति और संगीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। हम इस खास रिपोर्ट में आपको सुनवाते हैं।
नागालैंड का मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल एक बार फिर पूरे देश में चर्चा में है। इस त्योहार को द वीक हेरिटेज अवार्ड्स में बेस्ट कल्चरल म्यूजिक एंड डांस के लिए सिल्वर बेनियन अवार्ड मिला है। ये पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में दिया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल को ये सम्मान जनजातीय संस्कृति को संगीत और नृत्य के जरिए संजोने के लिए मिला है। ये अवार्ड केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने कहा,
I am really thankful for the people who are engaged in preserving and conserving our heritage, which is most valuable asset for all of us. We have to preserve and conserve our heritage and hand over to the coming generations in the position what we have received from our parents or our generations who has come before us. This is a great service to the nation, and since our country is undergoing era of cultural renaissance, so what people who have been awarded are doing, it is commendable. It's a source of inspiration to many, many people.
हमारी सांस्कृतिक विरासत सबसे कीमती चीज है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को देना चाहिए। इस मौके पर शेरोन लॉन्गचेरी, जो नागालैंड हाउस दिल्ली में ज्वाइंट रेजिडेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने राज्य की तरफ से ये पुरस्कार लिया। उन्होंने कहा,
India is one of the few countries in the world where north, south, east or west, wherever you go, you'll be seeing and tasting and experiencing a completely diverse cultural experience. I think there are very few places or countries in the world that can boast of heritage like India. Just a small state like Nagaland with a population of little over 2 million people, our culture itself is so diverse, and even a small state of Nagaland has something unique to offer to the cultural mosaic of the country.
ये सम्मान नागालैंड की खास संस्कृति को पूरे भारत में पहचान दिलाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को अक्सर फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये हर साल दिसंबर में होता है और इसमें नागालैंड की सभी जनजातियों की रंग बिरंगी संस्कृति देखने को मिलती है। ये फेस्टिवल आज सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे भारत की जीवित परंपराओं का एक शानदार उदाहरण बन चुका है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैरी की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति और कला की एक रोचक यात्रा लाए हैं। ये रोचक यात्राओं की श्रृंखला में हमने पिछले कुछ दिनों बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की। आज बारी है पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की। पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में खेला जाने वाला पोलो शताब्दियों से मणिपुर में खेला जाता रहा है और आज भी इसे इस राज्य में खेलने की परंपरा है। इसी तरह से तमाम ऐसे खेल हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जनजातियों द्वारा आज भी खेले जाते हैं, और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। बहुत सारे पदक हमारे देश के लिए उन्होंने जीते हैं। आप सभी ने मैरी कॉम का नाम तो सुना ही होगा, और ऐसे तमाम खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों और तमाम खेलों में भारत के झंडे को लहराया है। तो आइए एक विस्तृत आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की रोचक यात्रा पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के परंपरागत खेलों के बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों से निकलने वाले खिलाड़ियों की यात्रा के बारे में, और साथ में सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उत्तर पूर्व भारत, जिसे हम भारत का रत्न भी कह सकते हैं, न केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषाई विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग खेलों के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सादगी और कठोरता है जो खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के पारंपरिक खेल आज भी गांव कस्बों में जीवित हैं, और वहीं से निकलते हैं ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहराते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में विविध पारंपरिक खेल देखने को मिलते हैं, जो स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और जीवन शैली से गहराई से जुड़े हैं। असम में पारंपरिक खेलों का प्रमुख उदाहरण है दोंधी बियो, जो दो टीमों के बीच खेले जाने वाला एक तेज गति वाला खेल है। वहीं कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है सगोल कांगजेई, जिसे आधुनिक पोलो का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ के लोग सदियों से इस घुड़सवारी खेल को खेलते आए हैं। इसी राज्य से पोलो का अंतर्राष्ट्रीय सफर शुरू हुआ। थांगता और सरित सरक मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जिनमें शारीरिक क्षमता, लयबद्धता और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। यूबी लकपी मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है, जो रग्बी जैसा होता है, लेकिन इसमें तेल से लिप्त नारियल का उपयोग गेंद की तरह किया जाता है। ये खेल खासकर त्योहारों पर खेला जाता है और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी है। मेघालय में जटरा और वाईकुपर जैसे पारंपरिक खेल देखे जाते हैं, जो पारंपरिक समुदायों के बीच आपसी सहयोग और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आर्चरी यानी तीरंदाजी बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर तेर शिला नामक खेल, जिसमें दैनिक जीवन की कुशलता झलकती है। मिजोरम में इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट आज भी पारंपरिक गौरव का विषय रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किट्टल और सुपेक जैसे खेल खेले जाते हैं, जिनमें शरीर के लचीलेपन और तीव्रता की परीक्षा होती है। नागालैंड में खो खो और सेसे जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से दक्ष बनाते हैं, बल्कि सामुदायिक भावना भी सिखाते हैं। नागा रेसलिंग यहाँ का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है, जो ताकत, संतुलन और तकनीक पर आधारित होता है। अरुणाचल प्रदेश में एपटानी जनजाति का डीलो खेल और मिशमी जनजाति का कट्टा फाइटिंग आज भी पारंपरिक मेलों में दिखते हैं। यहाँ के बोंग गेम्स और लोकल एथलेटिक स्पर्धाएं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी के बावजूद खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेलते हैं। त्रिपुरा में मुकना और थांगुट जैसे कुश्ती आधारित खेल स्थानीय युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। बम्बा और नटुआ जैसे खेल भी विभिन्न जनजातियों में खेले जाते हैं। सिक्किम में याक रेसिंग और थोड़गे जैसे खेल पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा हैं। सिक्किम की ऊंचाई और कठोर मौसम के बीच ये खेल खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। ये पारंपरिक खेल न केवल सांस्कृतिक पहचान के वाहक हैं, बल्कि खेल भावना, अनुशासन और परिश्रम के बीज भी बोते हैं। यही कारण है कि आज इन राज्यों से निकलकर कई युवा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर कर रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत के खिलाड़ी अब किसी भी खेल मंच पर केवल भाग लेने नहीं जाते, बल्कि पदक जीत कर लौटते हैं। इस क्षेत्र की मेहनती और अनुशासित जीवन शैली ने यहाँ के खिलाड़ियों में एक विशेष मानसिक दृढ़ता पैदा की है, जो खेलों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की मैरी कॉम की।
उनका पूरा नाम मंगते चंगनेई जैंग मैरीकॉम है। वे मणिपुर के चुरा चांदपुर जिले से आती हैं। उन्होंने 2002 में तुर्की के अंताल्या में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का ध्यान खींचा। इसके बाद वे 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में भी विश्व चैंपियन बनी। कुल मिलाकर उन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने फ्लाईवेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब बात करते हैं सेखोम मीराबाई चानू की, जो मणिपुर के नोंगपोंग कांगचिंग गांव से हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेटलिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर देश का सिर ऊंचा किया। इससे पहले 2017 में उन्होंने अमेरिका के अनाहिम शहर में आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने 201 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई को भी पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लवलीना बोरगोहेन असम के गोलाघाट जिले से आती हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता और असम की पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक पदक प्राप्त किया। 2023 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रचा। उन्हें अर्जुन पुरस्कार और असम गौरव सम्मान से नवाजा गया। जेरेमी लाल रिनुंगा मिजोरम के आइजोल से हैं। 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित यूथ ओलंपिक में उन्होंने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था और वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय वेटलिफ्टर बने। 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 67 किलोग्राम वर्ग में कुल 300 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। बिंध्या रानी देवी मणिपुर से ही आती हैं। उन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 55 किलोग्राम भार वर्ग में 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। नयनमणि सैकिया असम के गोलाघाट से हैं और भारतीय लॉन बॉल्स टीम की सदस्य हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने लॉन बॉल्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। दिम्पा देवी मणिपुर से हैं और उन्होंने भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया। मणिपुर से ही बेमबेम देवी को भी भारतीय महिला फुटबॉल का अग्रणी चेहरा माना जाता है। वे 2015 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने तक भारत के लिए 85 से अधिक मैच खेल चुकी थी। थोइबा सिंह मणिपुर से आने वाले हॉकी खिलाड़ी हैं। वे भारत के लिए 1996 के अटलांटा ओलंपिक में खेले थे। सरिता देवी भी मणिपुर से हैं। उन्होंने 2006 के दोहा एशियाई खेलों में कांस्य पदक और 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। उत्तर पूर्वी भारत के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के कई क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यरत हैं। इम्फाल और गुवाहाटी के केंद्र वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और फुटबॉल के लिए प्रमुख माने जाते हैं। जहां एक ओर संसाधन सीमित है, वहीं दूसरी ओर लगन असीमित है। यही कारण है कि भारत की खेल नीति में अब उत्तर पूर्व एक केंद्रीय स्थान ले चुका है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए सरफिरोजी।
श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044, 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी। उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।